नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगी। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कसौटी में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए, 1 अप्रैल से होंगे लागू। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से। दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को समय पूर्व चुनाव कराने को कहा। भारत ने इंग्लैंड में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता। और पंजाब की जसप्रीत कौर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा का दौरा करेंगी। वे रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के विमान से आज सुबह करीब 10:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगी। इसके बाद वे राज्य विधानसभा परिसर पहुंचकर यहां पौधारोपण करेंगी। राष्ट्रपति विधानसभा में आयोजित रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी और कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। इस समारोह को राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत भी संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान सदस्य संदर्भ शीर्षक वाली एक पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ही ओडिशा के नयागढ़ जिले में श्री नील माधव मंदिर में दर्शन करेंगी। मंदिर दर्शन के बाद राष्ट्रपति कलियापल्ली में भारतीय विश्व बासु शबर समाज के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। भुवनेश्वर में राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद कल सवेरे उनका दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कसौटी में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
अब 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पहले इनके लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार टर्नओवर सीमा भी 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। 25 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयां लघु उद्यम वर्ग में रखी गई हैं। पहले इनके लिए निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए थी। इन उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा 50 करोड़ रुपए से दोगुनी कर 100 करोड़ रुपए की गई है। 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां अब मध्यम उद्यम मानी जाएंगी। पहले इनकी निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए थी। मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा दोगुनी कर 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। समाचार कक्ष से पूजा।
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिन का ये सत्र इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा और इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। आवश्यकता पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। सदन की कार्यवाही दिन के 11 बजे से शुरू होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बजट सत्र के पहले दिन सदन में दिल्ली परिवहन निगम DTC के कामकाज पर CAG रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वहीं मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सदन में बजट पर चर्चा बुधवार को होगी और चर्चा पूरी होने के बाद अगले दिन विधानसभा में बजट को पारित किया जाएगा। बजट सत्र के अंतिम दिन निजी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा होगी। वहीं प्रतिदिन सदन में प्रश्नकाल भी होगा, जिसमें संबंधित मंत्री सदस्यों द्वारा पूछे गए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सत्र के दौरान सदन की गरिमा बनाए रखने और नियमों का पालन करने का भी अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आदर्श, दिल्ली।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि वित्तीय नीतियों के निर्धारण और वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय राजधानी की विकास कार्य योजना तय करने के लिए ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अचानक देश में 28 अप्रैल को चुनाव कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लिबरल पार्टी की वर्तमान सरकार से अधिक मजबूत जनादेश वाली सरकार सुनिश्चित करने के लिए समय पूर्व चुनाव की घोषणा की गई है। पड़ोसी देश अमेरिका से व्यापार युद्ध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा को अमेरिका में 51वें राज्य के रूप में मिलाने के खतरे को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। कनाडा ने अमेरिका का 51वां राज्य बनने से स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा है कि अमरीकी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संपन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि बातचीत रचनात्मक रही और प्रमुख मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे श्री उमेरोव ने कहा कि राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन और यूरोप के लिए न्यायसंगत और स्थायी शांति बहाल करने को प्रतिबद्ध हैं। इस बीच अमरीकी और रूसी शिष्टमंडलों के बीच आज होने वाली बातचीत राजनयिक प्रयासों में अगली महत्वपूर्ण कड़ी होगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया। इसमें नेपाल के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में भारत नेपाल आर्थिक सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी। समारोह में नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
Today, India has one of the best startup ecosystems in the world. In Nepal too, as Prime Minister K.P. Sharma Oli mentioned a few days ago, startups system is being supported by the government of Nepal. And as both our countries comprise of large proportion of youth, I think going forward, a startup connect between India and Nepal would help us to foster greater linkages between our youth of the two countries.
आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के हानिकर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें जोखिम आबादी वाले क्षेत्र में टीबी की पहचान, टीबी रोगियों को मुफ्त दवा और निदान प्रदान करना और निक्षय पोषण योजना के तहत रोगी को प्रतिमा 1,000 रूपए की राशि प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिन का टीबी उन्मूलन अभियान भी शुरू किया गया, ताकि टीबी के छूटे हुए मामलों का पता लगाया जा सके, मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और नए मामलों को रोका जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 की वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों की संख्या में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई। यह संख्या वर्ष 2015 के प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी, जो घटकर 2023 में 195 पहुंच गई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे क्षय रोग से बचाव और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक डॉक्टर उर्वशी बी सिंह तथा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित कुमार परिचर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से तपेदिक की पहचान, समय पर निदान और उपचार के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-23-42-1050 और 011-23-31-44-44 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
भारत ने इंग्लैंड में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिए हैं। पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से हराया।
Our team guys played very well and they have shown their extraordinary performance. As a captain, we have the more pressure to maintain the team. Then also England team, they have played us very well. The audience, their support of the both the side for Indian and England also, we're very much happy.
इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी फाइनल में 34 के मुकाबले 57 अंक से इंग्लैंड को मात दी। पहली बार एशिया से बाहर इंग्लैंड इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में शीर्ष कबड्डी टीमों ने भाग लिया। वर्ष 2019 में मलेशिया की मेजबानी में आयोजित आरंभिक प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता था। इधर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कल पंजाब की जसप्रीत कौर ने पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना ही 45 किलोग्राम श्रेणी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। मनीष ने भी 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जम्मू कश्मीर की तीरंदाज शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीता। राकेश कुमार और ज्योति बालियान ने भी अपने अपने मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा आईपीएल T20 क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। विशाखापत्तनम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
मौसम विभाग ने आज आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों यमन, तेलंगाना और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी भागों में हल्की वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। गुजरात के तटीय इलाकों में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 3 से 4 दिन के दौरान अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। तेलंगाना में बेमौसम की बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया है। कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा होने से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर राज्य में कानून और व्यवस्था को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों का ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील समय है, इसलिए प्रशासन को लगातार सतर्क रहना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सोशल मीडिया पर नजर रखने, शांति समितियों की बैठकें करने और सौहार्द बनाए रखने के लिए मीडिया की मदद लेने को भी कहा। इसराइल की सेना ने कल दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया और हमास के पोलित ब्यूरो सदस्य इस्माइल बरहूम और 4 अन्य फिलिस्तीनियों को मार गिराया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इसराइली ड्रोन ने परिसर की आपातकालीन इमारत की दूसरी मंजिल को निशाना बनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद विशाल। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला ने संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसवाले के बयान को दिया है धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक, आक्रांता जैसी मानसिकता वाले देश के लिए खतरा। वहीं दैनिक ट्रिब्यून लिखता है RSS ने लिया संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर आग में जले नोटों के बंडल मिलने की घटना की जांच के लिए समिति का गठन, राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों में है। भारत के प्रधान न्यायाधीश ने बनाई आंतरिक जांच समिति। संभल की शाही जामा मस्जिद प्रबंध समिति के अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी अखबारों की सुर्खी है। वहीं देशबंधु ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देशव्यापी आंदोलन की घोषणा को पहले पन्ने पर जगह दी है। सरहद की निगरानी करेंगे AI क्षमता से लैस रोबोट। दैनिक जागरण के अनुसार देश की सुरक्षा में रोबोट तैनात करने की तैयारी, सेना कर रही फील्ड परीक्षण। निवेशकों ने अधिक ब्याज वाली FD की ओर किया रुख, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच सावधि जमा में निवेश 23 गुना बढ़ा।
धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगी। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कसौटी में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए, 1 अप्रैल से होंगे लागू। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से। दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर CAG रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को समय पूर्व चुनाव कराने को कहा। भारत ने इंग्लैंड में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता और पंजाब की जसप्रीत कौर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।